शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी बची थी जब श्यामली की टैक्सी धीरे धीरे उनके घर के सामने आकर रुकी। गेट के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर को पहले ही कुछ अंदेशा हो गया हो। जैसे ही श्यामली ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। ड्राइंग रूम में सावित्री खड़ी थी, चेहरे पर साफ चिंता। आरती और वेद पास ही बैठे थे, पिता सोफे पर टिके हुए, हाथ में खांसी की दवाई की बोतल, बार बार खांसते हुए। जैसे ही उन्होंने श्यामली को उस हालत में देखा, माहौल एकदम बदल गया। अहे, ये क्या हुआ बेटा? सावित्री लगभग भागती हुई उसके पास आईं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। श्यामली ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ, छोटा सा एक्सीडेंट था।
छोटा सा?
आरती ने तुरंत तीखे लहजे में कहा। ये छोटा लगता है तुम्हें? सिर पर पट्टी, हाथ में चोट, ये सब मजाक है क्या? वेद ने भी गंभीर नज़रों से उसे देखा। कैसे हुआ? पिता ने बस उसे देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। श्यामली एक पल को चुप हो गई। उसे लगा अगर वो सच बोलेगी तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसने बस नज़रें झुका लीं। मैं ठीक हूँ सच में, बस थोड़ी सी कमज़ोरी थी, चक्कर आ गया था। सावित्री ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ लिया। तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? खाना खाती भी हो या नहीं? श्यामली हल्का सा मुस्कुराई। खाती हूँ माँ। झूठ, आरती ने फिर से बीच में टोका। चेहरा देखो इसका, बिल्कुल उतर गया है। वेद ने धीरे से कहा। पहले इसे बैठने दो, फिर बात करेंगे। सावित्री ने तुरंत उसे सोफे पर बैठाया। आराम करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आज, पिता ने धीमे से खांसते हुए कहा। डॉक्टर ने क्या कहा?
कुछ खास नहीं, श्यामली ने जवाब दिया, बस रेस्ट करने को कहा है।
कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। हर कोई उसे देख रहा था, जैसे उसकी हालत पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन श्यामली अब और सवालों से बचना चाहती थी। मैं कमरे में जा रही हूँ, उसने धीरे से कहा। सावित्री ने सिर हिलाया। जाओ और आराम करो। कमरा। दरवाज़ा बंद होते ही श्यामली ने गहरी सांस ली, जैसे वो अब तक खुद को संभाले हुए थी और अब थोड़ा ढीला पड़ गई। उसने धीरे धीरे अपना दुपट्टा हटाया, आईने में खुद को देखा। माथे की पट्टी, हल्की सूजन और आंखों में थकान। लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज़ थी, विश्वनाथ का चेहरा, उसकी आवाज़, उसका खाओ कहना। वो पल अनजाने में उसके दिल में कहीं ठहर गया था। श्यामली ने तुरंत नज़रें फेर लीं। पागल हो रही हूँ मैं, वो बुदबुदाई, फिर सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद पानी की हल्की आवाज़, भाप से भरा कमरा और धीरे धीरे गिरती थकान। श्यामली ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सिर्फ शरीर ही नहीं अपने दिमाग को भी शांत करना चाहती हो। करीब 20 मिनट बाद वो बाहर आई। बाल गीले थे, चेहरा थोड़ा फ्रेश लग रहा था, लेकिन हाथ में दर्द अब भी था। वो कपड़े बदल ही रही थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कमरे में कोई है। उसका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और उसके पास कोई खड़ा था। सुधीर, उसके मुंह से अपने आप निकला। सुधीर वहीं खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा मासूम सा। तुम कब आए? श्यामली ने गुस्से में कहा। मैं वो अभी आया, उसने सिर खुजाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में वही बचपना था। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, और ये सब कैसे हुआ? उसने उसकी पट्टी की तरफ इशारा किया। श्यामली ने आंखें घुमा ली। कुछ नहीं, तुम बस यहाँ क्यों आए हो फिर से? मैं बस देखने आया था, सुधीर ने धीरे से कहा। तुम ठीक हो या नहीं? उसकी सच्चाई साफ झलक रही थी। श्यामली कुछ बोलने ही वाली थी तभी, अच्छा तो ये यहाँ क्या कर रहा है? दरवाजे पर आरती खड़ी थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। देखा, उसने अंदर आते हुए कहा, जब तुम नहीं थी तब तो ये चालाक आदमी कहीं नहीं दिखा, और अब देखो तुम्हारे आते ही आ गया। वो सीधे सुधीर की तरफ बढ़ी। दूर रहो मेरी बच्ची से। सुधीर एकदम घबरा गया। उसने तुरंत श्यामली का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो उसी में सुरक्षित हो। डर मत, वो धीरे से बोला। आरती का गुस्सा और बढ़ गया। हाथ छोड़ इसका, श्यामली ने तुरंत बीच में आकर कहा। मौसी जी, छोड़ दीजिए ना, उसकी आवाज़ शांत थी। ये बेचारा खुद ही किस्मत का मारा है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सुधीर ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा कहा हो। आरती ने मुंह बनाया। तुम बहुत भोली हो, समझती नहीं हो लोगों को। सब समझती हूँ, श्यामली ने धीरे से कहा। वेद भी बाहर से झांक रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सुधीर अचानक मुस्कुराया, जैसे माहौल बदलना चाहता हो। चलो ना, उसने बच्चे जैसी उत्सुकता से कहा, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। श्यामली ने भौंहें उठाई। अभी? हाँ अभी, उसने तुरंत कहा। तुम्हें अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी। श्यामली हल्का सा हंसी। मेरे पास पैसे नहीं है, आरती ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा। मेरे पास भी नहीं है, सुधीर की आंखें चमक उठी।
मेरे पास है। उसने जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। देखो, वो इतने गर्व से दिखा रहा था जैसे कोई खजाना हो। शामली उसे देखती रह गई। इतनी सादगी, इतनी साफ नीयत। आज के दिन जहां सब कुछ उलझा हुआ था, वहां ये एक सीधी सी खुशी का ऑफर था। चलो ना, सुधीर ने फिर कहा, बस थोड़ी देर के लिए। शामली ने एक पल को सोचा, फिर माँ की आवाज बाहर से आई, शामली दवा ले लेना। उसने जवाब दिया, हाँ माँ। फिर धीरे से सुधीर की तरफ देखा, ठीक है चलते हैं। आरती ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगी। सुधीर ने मुंह बनाया, आप क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या करते हो, आरती ने तुनक कर कहा। शामली हंस पड़ी। कई घंटों बाद पहली बार दिल से। तीनों घर से बाहर निकले। हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर रोशनी जल चुकी थी। शामली धीरे धीरे चल रही थी, सुधीर उसके साथ और आरती पीछे पीछे निगरानी करते हुए। लेकिन शामली के मन में कहीं और भी कुछ चल रहा था। वो बार बार अनजाने में पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई कार कहीं से आएगी, कोई सख्त आवाज फिर से उसे डांटेगी। लेकिन सड़क खाली थी और शायद आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि दो अलग दुनिया उसके आसपास चल रही हैं। एक जहां सुधीर है, सीधा मासूम बिना किसी डर के, और दूसरी जहां विश्वनाथ है, सख्त खामोश लेकिन अंदर कुछ और छिपाए हुए। शामली ने हल्की सी सांस ली और आगे बढ़ गई, क्योंकि कहानी अभी शुरू ही हुई थी।